Papa Radio Exclusive Interviews।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।
आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक विशेष रूपकात्मक कार्यक्रम, ट्रांसजेंडर बनी गौरी सावंत का मातृ प्रेम। इनसे बातचीत कर रही हैं आरजे वर्षा और प्रस्तुति है संज्ञा टंडन की।
मदर मदर डियर मदर, मदर मदर डियर मदर, जब जब देखो तुझे, जब जब देखो तुझे आए भगवान नजर।
लंबे समय से महाराष्ट्र में महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए काम कर रही हैं गौरी सावंत जी। पुणे शहर के एक सामान्य परिवार में पली बड़ी हैं गौरी सावंत। महाराष्ट्र में एक निजी एनजीओ चलाती हैं और काफ़ी वक्त से सामाजिक रूप से सक्रिय भी हैं। आयोग ने महाराष्ट्र की गृहिणियों और ट्रांसजेंडर के बीच मतदान को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए इन्हें इलेक्शन एम्बेसडर भी बनाया है। वैसे गौरी सावंत जी एक सोशल वर्कर हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उससे बढ़कर एक अच्छी माँ है।
माँ मेरी, माँ प्यारी, माँ मम्मा, ओ माँ मेरी माँ।
3 साल पहले विक्स ने एक विज्ञापन प्रसारित किया था जो सोशल मीडिया में लाखों की संख्या में देखा गया था। विक्स के उस एड में एक 6 साल की बच्ची की कहानी थी जिसे उसके पेरेंट्स अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। उस बच्ची को मम्मी गौरी सावंत ने गोद लिया। वीडियो की शुरुआत गायत्री से ही होती थी जो एक बस में बैठी और बोर्डिंग स्कूल लौटने की तैयारी कर रही है। वो बताती है कि उसकी माँ चाहती है कि वो बड़ी होकर डॉक्टर बने, लेकिन वो वकील बनना चाहती है ताकि अपनी मम्मी की मदद कर सके। उस एड में बच्ची गायत्री और उसे गोद लेने वाली माँ गौरी सावंत के बीच के गहरे रिश्ते के बारे में बताया गया था। वीडियो में गायत्री आगे बताती है कि पहली बार वो अपनी मम्मी से कैसे मिली थी। पिता को उसने कभी नहीं देखा और जब वो बहुत छोटी थी तब बायोलॉजिकल माँ भी गुजर गई। मम्मी उसे अपने घर ले आई थी। उसने वीडियो में उन सारे पलों का जिक्र किया था जिसमें उसने अपनी मम्मी के साथ जिया है। हो सकता है हमारी बात सुनकर आपको वो ऐड याद आ गया हो और वो माँ भी याद आ गई हो जिनका आज कई मायनों में अक्सर जिक्र होता रहता है। सोशल वर्कर के रूप में, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में, ट्रांसजेंडर के रूप में, या अब तो कहा जाए गौरी सावंत के रूप में,
जिन्हें आज हर कोई सुनना चाहता है, उनके जीवन के बारे में जानना चाहता है। असली माँ क्या होती है वो इन्हें देखकर समझना चाहता है। गौरी सावंत जी से हमें बहुत कुछ है सीखने के लिए।
गौरी सावंत, जिनका जन्म मुंबई में दादर में एक मराठा परिवार में हुआ था, उनके पिता ने उनका नाम गणेश नंदन दिया था। उनके पिता सहायक पुलिस आयुक्त यानी SP थे। अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में पिता से बात न कर पाने की वजह से गौरी को उन्होंने छोड़ दिया था। वे घर से भागे हुए ट्रांसजेंडर्स के लिए मलाट के मलवाड़ी में सखी 4 चौगी नाम से आश्रय स्थल चलाती हैं। और आपको पता है, गौरी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके घर से भाग जाने के बाद उनके पेरेंट्स ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। उनके पिता ने उनसे कहा था कि वो उनके लिए मर चुकी हैं। गौरी अब चाहती हैं कि जो परेशानियां उन्होंने झेली वे दूसरे ट्रांसजेंडर न झेलें। वो चाहती हैं कि अगली पीढ़ी को स्वीकार्यता, शिक्षा और रोजगार सब कुछ मिले। उन्होंने 2009 में ट्रांसजेंडर्स को मान्यता दिलाने के लिए अदालत में पहला हलफनामा दाखिल किया था। नास फाउंडेशन ने उनकी अपील को आगे बढ़ाया जिसे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने जनहित याचिका का रूप दे दिया। इस याचिका की सुनवाई के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स को कानूनी पहचान दी। ये तो एक छोटी सी जानकारी हुई गौरी सावंत की, लेकिन हमने बात शुरू की थी गायत्री नाम की जिस बच्ची से, अब गौरी सावंत के पास बहुत सारी बच्चियां हैं। उनका जो नारी मन है, उनके मन में जो मातृ प्रेम जगा हुआ है, समाज के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं एक माँ की, और समाज की माँ के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, इन सब बातों को लेकर अरबा रेडियो के लिए आरजे वर्षा ने बातचीत की है गौरी सावंत से। तो आइए सुनते हैं ही ये कार्यक्रम।
नमस्कार गौरी सावंत जी।
नमस्कार। नमस्कार
जी, बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका हमारे इस शो पर। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मन में ये कभी ख्याल आया था कि क्या आप कभी माँ बनोगी?
बिल्कुल नहीं, मतलब मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, पर मैं बचपन से थोड़ी पैंजी थी और एक बार मैं किसी के शादी में गई थी तो मेरे मामा ने हंसते हंसते पूछा बड़े होके क्या कहेंगे। मेरे पिताजी पुलिस में थे तो उनको शायद लगा कि मैं पुलिस होंगी करके बोलूंगी, तो मैंने कहा कि मैं माँ बनूंगी।
ओके।
और तब मेरे मामा ने गाल पे से तमाचा, मतलब प्यार से तमाचा मार के बोला लड़के माँ नहीं बनते।
ओ।
और पता नहीं, पर बोलते ना कि विकृति एवं प्रकृति, निसर्ग है, जो आप फेंकोगे वो आपके पास बहुत ताकत से आएगा। वो मेरे दिल में कहीं चोट लगी थी, अब समय के साथ वो भय भी गई, जख्म भर गई पर दाग रह गया था। और जब गायत्री मेरी जिंदगी में, तब मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि जिस हालात में मेरी बच्ची मेरे पास आई थी, अगर मैं शायद उसे ना लेती तो आज वो शायद सेक्स वर्कर बनती थी
जी।
तो ये अनवांटेड प्रेगनेंसी थी मेरी, मतलब जिसके लिए मैंने इमली वगैरह कुछ नहीं खाया था, पर मैं माँ हूँ गायत्री की।
जी बिल्कुल, जरूरी नहीं है, एक अच्छी नीयत के साथ में आपने उस बच्ची को अडॉप्ट किया, उसके अच्छे भविष्य के बारे में सोचा। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी आप एक माँ बन चुकी हैं, तो उसके बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया, उसके बारे में कुछ बताएं।
गायत्री मेरी जिंदगी आने के बाद मेरी बहुत सारी चीजें बदल गई, मतलब अगर आप देखोगे कि मेरा रहन सहन बदल गया, क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग हूँ हम हिजड़ा समाज से है
जी,
है ना, और हम सब दायरे तोड़ के रहते हैं, मतलब वी नेवर बीन द बैरियर। हम कभी ये नहीं सोचते कि इस तरीके से पल्लू लेना चाहिए, इस तरीके से ही बात करना चाहिए, अगर किसी ने देखा तो इस तरीके से हाय हेलो करना चाहिए। तो मेरी जिंदगी में सब बदलाव आया गायत्री आने के बाद।
अच्छा मैम, जैसे आपके बचपन में कुछ अंतर था और अभी जो आपके पास जो बच्चियां हैं, तो उन बच्चों में अपने बचपन में क्या अंतर देखती है?
अरे बापरे, मैं इसमें तो बहुत सारी चीजें देखती हूँ, मतलब आज की मेरी जो छोटी बच्ची 1 साल की है
जी,
उसका जो मैंने मोबाइल आया है उसमें स्क्रीन टच मोबाइल है, खिलौना
जी,
जो मेरे बचपन में नहीं था। आप समझने की कोशिश की है, और आज के बच्चे इतने होशियार हैं, जो हमें नहीं समझते उनको समझ में आता है।
बिल्कुल,
है ना। तो मैं ये देखती हूँ कि टेक्नोलॉजी बदल गई तो इंसान भी बहुत बदल गया, मतलब आने वाला जनरेशन इतना होशियार है, शायद मुझे पता नहीं था कि मेरे बचपन की यादों में अगर मैं पीछे देखूंगी कि मैं इतनी होशियार नहीं थी, पर आजकल के बच्चे इतने होशियार है, इन्हें सब समझ में आता है। मतलब मेरी छोटी 2 साल की एक बच्ची है, वो यूट्यूब चालू करती, कैन यू बिलीव,
ओ माय गॉड।
मतलब उसे पता है कि क्या लगा के यूट्यूब लगा के गाना सुनना है, और वो स्क्रीन को हाथ में पकड़ के स्क्रोल करती है। शायद तुम्हें हमें भी नहीं आता होगा बचपन में।
जी बिल्कुल, जो हमारी जो जनरेशन थी, हम तो 11-12 तो मतलब उस टाइम पे तो जस्ट नया नया लॉन्च हुआ था मोबाइल,
और आज भी मैं अभी किधर किधर जाती हूँ तो मुझे नहीं पता चलता कि अगर नेट बंद होगा तो वाईफाई चालू करना है, हॉटस्पॉट लेना है, मुझे भी नहीं समझ में आता, पर ये मेरे बच्चों को समझ में आता है।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही कि आजकल के जो बच्चे वो बहुत एडवांस है, जो फीचर्स हमें नहीं समझ में आते, इनकी जो कैचिंग पावर है ना वो बहुत अच्छी है। और मैम जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप एक सोशल वर्कर भी हैं, बहुत से काम आप करती हैं समाज के लिए, और एक एक माँ भी हैं, तो आप ये दोनों चीजों को कैसे बैलेंस करती हैं? जैसे कि आपको काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहना होता होगा तो
बिल्कुल बिल्कुल, जैसे पहले अगर वर्किंग वुमेन, मतलब अभी 90s के बाद औरतें ज्यादातर काम करने लगी है, है ना, मतलब पहले के वक्त में हमारी नानी या दादियां घर में रहा करती थी
जी,
और फिर हमने हमारी माँ को काम करते देखा, तो वर्किंग वुमेन की स्ट्रैटेजी हमारे यहाँ पे भी है। और बीइंग अ ट्रांसजेंडर हम शुरू से बाहर रहे हैं, मतलब हमारे लिए वो घर सजाना, आपके जैसे वो हॉल बेडरूम, ये संकल्पना से हम स्टूडियो अपार्टमेंट में रहते हैं, तो हमारे लिए इतना ये नहीं था। पर अभी जब मैं बाहर जाती तो मेरा आधा ध्यान मेरे बच्चों पे रहता है, पर हमारी भी फैमिली है, मेरे गुरु है, मेरे चेले है जो मेरे बच्चों का ध्यान रखते हैं।
ओके, तो सारी चीजें आराम से मैनेज हो जाती है?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे गुरु को पता है कि सुबह उसको मेरी बेटी को दाल, मूंग की दाल की खिचड़ी खिलानी, छोटी को एक का दूध का बोतल बनाना है, उनका डायपर सुबह सुबह बदलना, ये सब चीजें मेरे गुरु मेरे चेले तो ये सब मिलके हो रहा है।
सब एक परिवार, एक परिवार है और बिल्कुल उनको नानी का, मौसियों का है ना सारा प्यार।
बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हमारे घर का नाम ही हमने रखा है नानी का घर।
जी वाह, बिल्कुल।
ये देखो छोटी का आवाज आ गया। गुड गर्ल, गुड गर्ल। नहीं नहीं बेटा,
ओके,
ये बैकग्राउंड म्यूजिक जरूरी है आपके लिए।
नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, तो माँ है तो माँ के आसपास ये आवाजें होना बिल्कुल स्वाभाविक है। अच्छा मैम, आपको मतलब इन बच्चों के साथ कौन सा क्वालिटी टाइम जो होता है आपको बिताना बहुत अच्छा लगता है?
शाम को 5:30, अभी तो कोरोना के वजह से हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे।
हाँ, बिल्कुल।
तो मैं सब बच्चों को हमारे नहला दुला के मेरे जब तैयार करते हैं, और जब मेरी छोटी बच्ची को भी वो जूते लाए जो पैक 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 आवाज करते हैं।
हाँ, बिल्कुल, चलने से
उसमें। और एक एक मेरी बच्ची को हमने वो घोड़ा लाया है जो हिलता है, उसमें डाल के जब गार्डन में बैठती हूँ, और मेरे पास मेरे लैब्राडोर डॉग है तो
अच्छा।
और झूले पे बैठ के चाय पीती हूँ, चाय की सिस्टियाँ लेती हूँ 4 से 5 बजे तक। उस वक्त मैं कोशिश करती हूँ कि मोबाइल ना उठाऊं और इनके साथ टाइम देती हूँ।
बिल्कुल बिल्कुल।
और मतलब... एक एक देखते रहती हूँ कि आज ये मेरी बच्ची कैसी बड़ी हो गई, एक 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 वर्ड बोल रही बच्ची, तब मुझे ज्यादा खुशी होती है। तो मतलब मैंने कोशिश करती हूँ कि 1 घंटा तो उनको दे दूँ।
बिल्कुल, मतलब आप पूरा जो एक एक मोमेंट है वो बच्चियों का आप बिल्कुल इंजॉय कर रही हैं आराम से। और अभी तो फुल टाइम है कोरोना की वजह से, आपको और ज्यादा टाइम मिल रहा होगा बच्चों के साथ में व्यतीत।
तो कोरोना की वजह से मैं ज्यादा टाइम अभी किचन में जाने लग गई हूँ। मतलब हर घंटे 1 घंटे बाद मुझे लगता है कि बच्चों को क्या, मतलब शुरू शुरू में तो मैं यूट्यूब पे से डाउनलोड करके रेसिपी देखी थी, तो अभी तो कंटाल गई हूँ, पर फिर भी बच्चों लोगों को ज्यादा भूख लगती है मैंने नोटिस किया। और मेरे गुरु को सलाम है या मेरे चेलों को सलाम है, जो मैं नहीं रहती थी क्योंकि वर्किंग वुमन हूँ, बाहर काम की वजह से बाहर जाना पड़ता, तो ये लोग किस तरीके से बच्चों को संभालते अभी मुझे पता चल रहा है।
अभी तो जितनी भी माएं हैं जो वर्किंग वुमेन है वो बहुत अच्छी मेरे ख्याल से कोरोना काल में।
पर हम लोग ये कहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम, तो मेरे को लगता है कि माओं की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है।
बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा टाइम, मतलब जब हम ऑफिस जाते हैं ना तो कुछ वक्त हमारे लिए।
मैं कभी कभी मतलब वेबिनार होता है मेरा तो मैं लैपटॉप पे काम करती हूँ और पीछे से कुकर की सीटी की आवाज आता है।
मैम अभी जितनी भी वर्किंग वुमेन है ना वो मेरे ख्याल से जिनको खाना बनाना नहीं आता होगा ना, तो ये जो टाइम चल रहा है महामारी जो चल रही है, इसमें जो माए है ना वो बहुत अच्छी वर्किंग वुमेन
बन गई। मतलब इसने हमें क्या सीखा है, इसका सदुपयोग हमने इस तरीके से कर लिया है।
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब
ये मैटरनिटी लीव से भी ज्यादा ये शक्ति की सजा ये मिली, लीव मिली है, तो इसका सदुपयोग करना चाहिए मुझे लगता है औरतों ने।
हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम ये बताइए कि क्या कभी जो बच्चियां हैं उन्होंने अपने माता पिता के बारे में कभी आपसे कभी पूछते हैं कि वो कैसे हैं?
नहीं, मतलब एक छोटी बच्ची वो हमारे पास 3 दिन की आई थी।
अच्छा।
और जो ट्रांसजेंडर इंटरसेक्स बेबी होते हैं वो एक बहुत बचपन में आ जाते हैं, तो हमें ही माँ बाप समझ लेते हैं।
ओके,
है ना।
जी जी,
तो हमें समझ। और सेक्स वर्कर्स की जो बच्चियाँ हमारे पास छोड़ जाती है उन्हें पता होता है कि मेरी माँ ये है पर ये मेरी नानी है, मुझे हमारे पे अज्जी बोलते हैं, आई बोलते हैं, नानी बोलते हैं।
ओके,
तो ये डे केयर सेंटर जैसा है जहाँ पे औरतें अगर मेरी कोई सेक्स वर्क के लिए 15 दिन बाहर जा रही है।
हाँ जी,
अभी ब्रॉथल बेस्ड सेक्स वर्कर्स है जो दूसरी है, वो औरतें बाहर चली जाती है, तो बच्ची कहाँ रखेगी? आप बच्चे कहाँ सुरक्षित है? तो उन्हें पता है कि अम्मा के पास बच्ची छोड़ देंगे तो सुरक्षित है, अपने पास बच्ची छोड़ के चली जाती है।
बिल्कुल, मतलब एक
तो उनके पास से हम लोगों का मतलब उनको तो मायके में अगर तुम्हारी माँ के पास अगर छोड़ के बच्चा जाएगा तो वो थोड़ी पैसा देती है।
नहीं,
उनको बेसिक पता था कि मेरी बच्ची आने के बाद अच्छी दिखेगी, तंदुरुस्त दिखेगी। औरतें आके बोलती अम्मा उसका वजन बढ़ गया क्या, गोद में उठा तो मुझे ज्यादा सुकून लगता है।
जी बिल्कुल,
क्योंकि माँ ही सही बोलती है, है ना।
बिल्कुल, बिल्कुल।
जब माँ गोद में उठा के बोलती अरे बच्ची मोटी हो गई, तब मुझे वो लगता है अरे 15 दिन जो मैंने मेहनत की ना
मेहनत की उसका फल मिल गया।
माँ सही बोलती है।
नहीं, माँ कभी गलत नहीं होती मैम, और चाहे वो अपना बच्चा हो या किसी और का भी, माँ तो माँ होती है, उसको हर नजर से वो देखती है।
माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है।
जानना चाहेंगे मैम कि जैसे कि बच्चे जो होते हैं उनको तो माता का भी प्यार, माँ का भी प्यार बराबरी का चाहिए होता है, पिता का भी प्यार चाहिए होता है, दोनों की उनको नीड होती है। तो आपको लगता है कि आप दोनों का बैलेंस, मतलब दोनों का प्यार बच्चों को दे पा रही हैं या वो?
बिल्कुल बिल्कुल। देखो कैसा है ना कि आजकल वो जैसे सिंगल पेरेंटिंग का क्रेज आया है या अभी नहीं है, तो अभी हर चीजें हम कमी को पूरा करने की कोशिश हमारे साइड से करते ही है। मतलब जब मैं ड्राइव करती हूँ तो मेरी छोटी बेटी द्वारका वो मुझे बहुत प्यार से देखती है। मैं गाड़ी चलाते हूँ, नजर मुझसे नहीं हटाती, बाहर नहीं देखती है। अब मैंने उसे पूछा कि तू माला का बकते, मतलब मुझे क्यों देखती, तो शी जस्ट स्माइल्ड। फिर मैंने दो तीन बार देखा उसको, वो आगे बैठने की कोशिश करती है। मैं इको वैन चलाती हूँ तो वो आगे बैठती है मेरे पास में, अब कंटिन्यू मुझे देखती है, अब मुझे देखते टेंशन आता, कभी मैं स्माइल दे के देखती हूँ। तो शायद उनमें मुझे लगता है कि वो पितृ का भी छाया मुझ में देख रही होगी, ये मेरी माँ है, सब ये काम भी करती है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता है, बट शी लव्स मी, मुझे प्यार से देखती है। तो फिर मुझे आता है कि यार स्पीड ब्रेकर पे जैसे धीरे चलाना है, जब बच्चे साइड में होते तो मैं स्लो ड्राइव करती हूँ, ये सारी चीजें जिम्मेदारी आ जाती
है। जिम्मेदारी के
तो
साथ
पिता का भी रोल मुझे मेरे बच्चे सिखा रहे, कैन यू बिलीव।
बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, जैसे ये इन बच्चों का आप जैसे केयर करती हैं, तो बहुत सी आपके क्या कभी आपकी लाइफ में इनकी केयर करते वक्त कोई दिक्कतें आई हैं?
बहुत बार दिक्कतें होती है, जैसे अगर मैं कहूँ कि ज्यादातर ये बच्चे हमारे सेक्स वर्कर्स के हैं, ये महिलाओं के बच्चे हैं, और अगर इनको स्कूल में एडमिशन लेना है, मतलब इंडिया में क्यों हो रहा है पता नहीं, हम लोग महिला सक्षमीकरण की बात करते, पर आपको बताओ कि ये औरतें अपना नाम लगा नहीं सकती बच्चों के स्कूल में, वो थोड़ी दिक्कत होती है, लोगों की मेंटालिटी ये नहीं है। आप बताइए कि सेक्स वर्कर का कोई आदमी नहीं तो किस तरीके से अपने आदमी का नाम रखेंगे?
बिल्कुल सही बात है।
तो ये सब छोटी छोटी दिक्कत है। हॉस्पिटल में जाओ, उनको जब डिलीवरी के लिए करना है तो डॉक्टर लोगों का जिद होता है कि इनके आदमी का नाम रखो। और मैं कहती हूँ कि महिला सक्षमीकरण की हम इतनी इतनी बातें करते हैं, क्या वो ढकोसली है?
मतलब जरूरी नहीं है कि
तुम्हें, हमें लग रहा है, हम ये सोसाइटी की औरतें जो वर्किंग वुमेन, हम बोलते हैं कि कोई जरूरत नहीं, पर अभी भी ढांचा बदला नहीं है। फॉर्म पे आज भी दिक्कत होती है, मुझे पीआरओ से डीन से झगड़ा करना पड़ता है।
ये समाज को सोचना चाहिए कि जब महिलाओं को, जब आप स्वतंत्रता की भी आप बात कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि पिता का नाम।
देखो कैसा ना, दो चीजें इसमें आपको समझनी पड़ेगी। एक तो हमारे इंडिया में सेक्स वर्कर लीगल नहीं है, आप समझ रही मेरी बात?
हाँ,
सेक्स वर्कर लीगल नहीं है इसलिए वो औरतों को श्रमिक का दर्जा नहीं दे रहे हम लोग। उसमें से अगर औरत को बच्चा होता है तो वो और मार्जिनलाइज हो जाता है। एक तो स्टिग्मा उसके साथ है कि वो सेक्स वर्कर है, बच्चे को अपना जात गोत धर्म कुछ भी नहीं पता
जी।
तो ये हमें कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा सोच,
हमारी सोच।
कल तक मैं, मुझे लगता था कि ये लोग मुझे ही नहीं अपना रहे क्योंकि मैं तृतीय पंथी हूँ, पर जब मैं बाहर आई हूँ आज समाज के औरतों के साथ काम करी तो मुझे लगा मेरे से ज्यादा दुख तो इन औरतों का है। फिर मुझे तुम पे थोड़ी हंसी आ जाती जब हम पेट्रियार्की कहते हैं, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करते, कहाँ औरतों के लिए जेंडर इक्वालिटी है
जी। सही बात है। तो ये बहुत बड़ा एक परीक्षा कह लीजिए, समाज को बदलना एक बहुत बड़ी चुनौती,
बहुत बहुत बहुत, मतलब लोगों की मेंटालिटी बदली। लोगों को देखो कैसा ना, वो औरतें कहीं नहीं जाती, वो जिस गली में मोहल्ले में रहते हैं ना वो वही रहती है, पर उनके पास जाने वाले आदमी लोग अपने अपने घरों से उनके पास जाते, वो किसी के घर नहीं जाती है।
बिल्कुल बिल्कुल।
फिर भी वो बदनाम है,
बट समाज जो है ना वो पुरुषों से कभी सवाल नहीं पूछता है हमेशा।
पर ये टाइम कब बदलेगा, वेन हम लोग बोलते हैं कि पुरुष प्रधान संस्कृति को, अभी स्त्री प्रधान संस्कृति कब होगी?
जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा समाज के सामने और हम महिलाओं के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
और तुम्हें बताओ कि सबसे ज्यादा मजाक की बात क्या है कि मैं पुरुष प्रधान संस्कृति से आई, उसके लिए शायद मेरे लिए बहुत आसान रहा हो कि औरत बन के साड़ी पहन के घूमना, और मुझे रोज ये एहसान होता है कि ये साड़ी नहीं मेरे लिए कफन है। क्या मैं इतनी सुरक्षित हूँ? क्या रात को बेरात को अगर मैं कभी ट्रैवल करूंगी अकेले तो क्या मेरे लिए सुरक्षित होगा?
बिल्कुल,
ये बहुत सारी चीजें हैं, हम किस किस को बदलेंगे? तो इसके लिए कहीं ना कहीं से शुरुआत होनी चाहिए। स्कूल कॉलेज में जेंडर इक्वालिटी के बारे में बोलना चाहिए, हमको औरतों को रिस्पेक्ट देना है, बचपन से माओं को सिखाना पड़ेगा कि अगर घर में दो लड़के हैं, एक लड़की और लड़का, तो लड़के को भी बोलना चाहिए कि सोमवार को तू बर्तन धोएगा, मंगलवार को दीदी धोएगी।
बिल्कुल सही, मतलब हर बात के लिए जब हम बचपन से ही जो हमारे परिवार में लड़कों को ये तुम्हारे
मतलब आज सुनने वाले औरतों बहनों को मैं ये बोल रही कि अगर आपको लड़का है तो आपके लड़के को आटा गुनना भी आप सिखाओ, बर्तन धोना भी सिखाओ, ताकि भविष्य में उसकी बीवी को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी।
बिल्कुल,
माँ ही सबक कर सकते हैं, माँ ही समाज बनाती है।
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे बचपन से ही लड़का और लड़की में जो है परिवार से ही शुरू हो जाता जाता है।
तो इसलिए अगर हमारी माँ अभी ये शुरू कर देना,
बहुत अच्छी बात कही आपने,
कहेगी बर्तन धोएगा
जी बिल्कुल,
मेरे ख्याल से उसकी जब शादी होगी तो उसे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, वो उसके औरत
बिल्कुल बिल्कुल, और वो समझेगा, ये नहीं एहसास होगा, ईगो हर्ट नहीं होगा कि नहीं ये काम मैंने पहले नहीं किया, अब तुम आई हो और मुझे कह रही हो, है ना। तो बिल्कुल ये एक माँ की जिम्मेदारी है कि लड़का लड़की में फर्क ना करे, जो काम लड़कियां कर रही बिल्कुल बराबर से लड़कों को भी वो जो काम है घर से ही ये शिक्षा दी जानी चाहिए, और माँ का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें।
याद किसी को हो तो ऐसी बात सुनाए जिसमें कहीं ना कहीं माँ का नाम न आए,
गार्जियन जो होते हैं वो अपने बच्चों को लेकर बहुत सारे सपने देखते हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो आप इस बारे में क्या सोचती हैं, आपकी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, तो
आप... मेरी बच्ची जैसे भी देखो कैसा ना, बचपन में मैं सोचती थी कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं,
okay.
और ये मैंने सपना मेरे गायत्री के ऊपर थोपने की कोशिश की, और आज गायत्री यूएस में है और वो शायद डेंटिस्ट बनना पसंद करेगी, आप समझ रही मेरी बात,
बिल्कुल
बच्चे कुछ भी बने, जब मेरी बच्ची टीचर सब बच्चे हमारे अभी फिलहाल तो टीचर खेलते हैं,
टीचर खेलते
हाँ सब हम टीचर खेलते हैं, और बाद में बड़े होने के बाद स्कूल की टीचर कहीं दिखेगी तो रोड क्रॉस करके आज भी हम भागते है ना, तो जिंदगी का फलसफा यही है, जो उन्हें बना है वो बने, पर मैं इतनी कोशिश करूंगी कि मेरे यहाँ से जो भी बच्चे बाहर जाएंगे उनको समाज के प्रति उनका कर्तव्य उनको ध्यान रहे, वो हमेशा ये सोचे कि हम समाज के कुछ देनदार लगते हैं, वी हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी, उसे हम डिनाई नहीं कर सकते, मेरे पर ये ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके बच्चे बोलेंगे कोई पूछेगा नहीं, अगर मेरे बच्चे बिगड़ गए तो उनकी परवरिश ये बोलेगा क्या गौरी ने यही सिखाया है, तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पे है।
जी जी, अच्छा मैम, जैसे कि हर माँ बाप को अपने बच्चों को लेकर के बहुत सारी जो फिक्र होती है ना वो सताती, तो आपको इन बच्चों के भविष्य को
होती है, मैं अगर बाहर जाती हूँ ना, अगर मुझे घर पे आना है, अगर मैं एयरपोर्ट से बाहर आ रही हूँ तो मैं दुकान में रुक के सब बच्चों की पसंद के चॉकलेट बिस्किट चीजें लेके फिर घर आती हूँ,
ओके,
कितना भी टेंशन हो मुझे भी सिक्योरिटी है मेरे बच्चों की,
बिल्कुल
कल को मेरे बच्चों के साथ क्या हो, माँ बाप बनने का मतलब ही यही है ना, फिकर, पर मेरे को कभी कभी वो कौवे से भी मैं सीखती हूँ कि घर बनाना चाहिए, कौवा क्या करता है अंडे जब देता है तब घर बनाता है, बाकी बच्चे उड़ने के बाद उनके लिए नहीं करता है, वो अभी हमको लर्न करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक एम्पावर आवर किड्स, कब तक फीडिंग करना है, पंछियों से ये हमें सीखना होगा कि बच्चों को हम तब तक सक्षम करेंगे जब वो उड़ने लगेंगे, लेट देम फ्लाई इन देयर ओन स्काई, उनको उनका डिसीजन लेने के लिए करो, हम उनके लिए जीना छोड़ देना चाहिए, मैं इस तरीके की थोड़ी माँ हूँ अभी।
नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी, और मैम आपसे बस एक लास्ट सवाल कि समाज से और हमारे जो श्रोता हैं उनसे आप क्या कहना चाहो कि एक माँ के,
अरे यार ये जाते जाते तुम कहते हो ना कि थोड़ा क्लाइमेक्स डाल देते हो, उस तरीके से लगते मैं मतलब जुगनू क्या सूरज को आईना दिखाएगा, मैं समाज की भाग हूँ, मैं इतना ही कहना चाहूंगी, तृतीय पंक्ति है, निसर्ग ने देते वक्त हमसे भर भर के दिया है, हर रंग को हम प्यार करते हैं, हर समाज के हर घटक को हम प्यार करते हैं, तो मुझसे दूरी ना बनाए, मुझे समझने की कोशिश करें, है ना, द्वितीय पंक्ति भी आप जैसा ही है, मुझ में भी ए बी पॉजिटिव मेरा खून है, मैं भी समाज का हिस्सा हूँ, दो कदम आप चलिए दो कदम मैं चलूंगी, और इसी से मुझे लगता है कि समाज खुशहाल रहेगा।
जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ये थी गौरी सावंत जी, जिन्होंने अपने माँ बनने के बाद उनके जीवन में आए परिवर्तनों और संघर्ष के बारे में बताया, निश्चय ही हमें इनके जीवन से सीख लेनी चाहिए, ये किन्नर समुदाय के लिए नहीं अपितु हर वर्ग के लोगों के लिए सराहनीय कार्य कर रही हैं। एक समय ऐसा था जब समाज ने इनके लिए दरवाजे बंद कर दिए थे, मगर गौरी जी ने अपने दरवाजे हमेशा सब लोगों की मदद के लिए खुले रखे हैं। गौरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमसे बात की, और निश्चित ही हमारे श्रोता और जो है जो भी ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे उनका नजरिया इसे सुनने के बाद जरूर बदला होगा या बदलेगा, एक परिवर्तन जरूर होगा। तो आपके सराहनीय कार्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे देशवासियों का भी दिन सुख मंगलमय बने, सब आरोग्यमय रहे, कोरोना जैसे महामारी से सब बचे और सबके घर में खुशियाँ रहे। धन्यवाद।
कोई भी माँ बन सकता है तो एक किन्नर भी माँ हो सकती है, समलैंगिक औरत भी माँ हो सकती है, समलैंगिक आदमी भी माँ हो सकता है, क्योंकि माँ प्यार और परवाह का नाम है। ये कहना है ट्रांसजेंडर गौरी सावंत का। गणेश से गौरी बनी ट्रांसजेंडर गौरी सावंत की कहानी आज हमने आपको सुनवाई अर्पा रेडियो पर। पुरुष रूप में जन्मे गणेश को बढ़ती उम्र के साथ ये समझ में आया कि वो भले ही बाहरी रूप में पुरुष दिखते हों पर भीतर मन से वो एक महिला हैं। गणेश ने अपने अस्तित्व के लिए परिवार से विरोध किया था और घर छोड़कर मुंबई में आकर अपने आप को गौरी सावंत में तब्दील किया था और अब एक महिला के रूप में, एक माँ के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया, लोगों को दिखा दिया कि माँ सचमुच प्यार और परवाह का नाम है। अर्पा रेडियो की तरफ से उनकी बच्चियों को भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ट्रांसजेंडर बनी गौरी सावंत का मातृत्व प्रेम, ये विशेष रूपकात्मक कार्यक्रम आपने सुना अर्पा रेडियो बिलासपुर से। उनसे बातचीत की आरजे वर्षा ने और कार्यक्रम की प्रस्तुति थी संज्ञा टंडन। अर्पा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।